ओम शांति, ओम शांति। जितने भी जोन सेवा के लिए बनाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा जोन कौन सा है? हाँ? सिर्फ बहनों ने कहा है। जितने भी जोन सेवा के लिए बनाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा जोन कौन सा है? अच्छा, सूर्य किधर से निकलता है? अच्छा, शिव बाबा ने जो रथ लिया वो कहाँ रहते थे? तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि अगर सूर्यवंशी घराने में आने हो आत्माएं तो कहां किस जोन की आत्माएं होंगी? हैं? क्योंकि उसी अनुसार बाबा ने सबको जन्म दिया संगम का। तो जो सूर्यवंशी घराने वाले होते हैं उनको ये विषय की आवश्यकता पड़ती है, बेहद के वैराग वृत्ति रखो, या उनकी ऑटोमेटिकली हो जाती है? बेहद का वैराग मैंने अंधेरे से वैराग, तो जो रोशनी की तरफ होगा सूर्यवंशी होगा, ईस्टर्न जोन का होगा तो उसको तो ऑटोमेटिकली अंधेरे से वैराग होगा। आप सोचिए, ये तो सब जानते हैं कि बहुत खराब, बहुत ही खराब खतरनाक हालात हो गए। आगे तो कहते थे होंगे पर अब तो हो ही गए हैं। अच्छा, किसी समुद्र में बहुत जोर से तूफान आ रहे हों, बहुत जोर से, और आप अपनी अपनी कश्तियों में उस समुद्र में हो, तो आपको एक बहुत बड़ा जहाज दिख जाए जो बहुत बड़ा है, जो तूफान में हिलता नहीं है, और हमारी कश्तियां तो डामाडोल हो रही हैं, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? जहाज को, जहाज तक पहुंच जाओगे कि हम जहाज को पकड़ लिया तो हम सेफ हैं, तूफान कितने भी आएंगे पर ये हिलेगा नहीं। बाबा की बहुत सी मुरलियां हैं कि जब बारिश आएगी तो लोग बस स्टॉप में जाके अपने आप जहां भी शेल्टर देखेंगे खड़े हो जाएंगे। अब हालात तो खराब आ रहे हैं, और इतने खराब आ रहे हैं कि जब तक आप कोई ऐसी चीज को नहीं पकड़ोगे जो कितने भी खराब हालात हों उसमें हिले ना, तो खतरा है। तो सारे ब्रह्मांड में, सारी दुनिया में ऐसा कौन है जो कितने भी तूफान हो लेकिन वो उन तूफानों को तोहफा समझता? वो कौन है? कोई जवाब ही नहीं दे रहे। हाँ? कोई ऐसे कर रहे हैं। कौन है वो जो, हाँ बहन जी बोलो। हाँ? हम सब हैं, शिव बाबा है। अगर हम सब हों तो आज का टॉपिक नहीं रखना चाहिए। मान लो हमें कोई कह दे, आपको तो बेहद की वैराग वृत्ति है, अब आप मधुबन में आ गए हो, यहीं रह जाओ, तो कौन कौन रहने को तैयार है? बस यहीं रह जाओ, वापस वापस नहीं जाना किसी में, पक्के दिल से बताओ। अच्छा, हाथ भी उठा रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बहुत समय पहले एक साधु जी पांडव भवन में आए थे, बाबा के दिनों में, तो वो पहले तो आश्चर्य में थे, यहां क्या होता है, साधु आके रहे। फिर उन्होंने जाके सारे कमरों में घूमा, एक नीचे कमरा था उसमें भी गए, तो पूछते हैं ब्रह्मा बाबा अपने किताबें कहाँ रखता है जिससे वो भाषण करते हैं। अच्छा, उनको किताबें तो मिली नहीं। फिर दो चार दिन समझा, देखा, ध्यान दीदार वालों को देखा, सबका जीवन देखा, तो बाबा को बोले, बाबा मैं यहीं रह जाऊं। बाबा ने कहा, बच्चे आपका घर है, भगवान का घर है, रह जाओ। अच्छा, दो तीन दिन बहुत खुश रहा, रहता रहा। चार पांच दिन के बाद बाबा अपने जहां ऑफिस था वहां बैठे थे, आया, बोला, बाबा मैं सोचता हूं मैं एक बार जाके ना अपना आश्रम वगैरह का सारा हिसाब किताब पूरा करके फिर आता हूं। बाबा ने कहा, ठीक है बच्चे। मैं वहां बैठा था, बाबा ने कहा, अब ये आएगा नहीं। और सचमुच ऐसा ही हुआ, वो नहीं आया। तो इसलिए क्यों कि थोड़ा वैराग तो इजी है, कहीं भी व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, बहुत अच्छा है, कुछ समय के बाद उसके उसके बंधन खींचते हैं। आप सब ने स्वर्ग में एक सीट खाली है का नाटक तो देखा होगा, है? तो नारद जी जो थे वो बाबा के पास पहुंच गए। तो नारद जी तो बहुत ऐसे मुनि थे, नई नई बात निकालते थे। उन्होंने कहा, भगवान मैं एक एप्लीकेशन लेके आया हूं। क्या? कि सतयुग में तो थोड़े से लोग हैं, स्वर्ग में बहुत थोड़े से आत्माएं हैं, और इतनी चीजें हैं, स्वर्ग है, इतना सब चीज अति है, बहुत है, हिसाब किताब भी नहीं रखना पड़ता। कलयुग में उल्टा है, कलयुग में शमशान घाट में डेड बॉडी को संस्कार करने के लिए भी लाइन लगती है, हर जगह भीड़ भाड़ है। तो आप ऐसे क्यों नहीं करते हैं भगवान, कुछ लोगों को कलयुग से इधर ट्रांसफर कर दो, ताकि यहां इतना कुछ पड़ा है, एक्स्ट्रा है, तो काम में आ जाएगा। अब उसका एप्लीकेशन तो अच्छा था, तो कोई भी कहेगा ठीक बात है, कहां है? इतने लोग हैं, खाने को नहीं मिल रहा, कहां इतने लोग हैं, खाना बच रहा है, तो क्यों ना ट्रांसफर कर दें, तो क्या हुआ होगा? शिव बाबा मुस्कुराए। जैसे यहां भी जब अव्यक्त बाबा आते थे तो जो बच्चा सामने आता था मन से अपना कुछ बोलता था तो बाबा मुस्कुराते थे। अब बाबा की मुस्कुराहट में उसका उत्तर होता था कि भी किस लिए बाबा मुस्कुरा रहे हैं। तो इसी प्रकार से मुस्कुराए, नारद बोला मेरी क्या रिक्वेस्ट गलत है, आप बताइए। वो फिर मुस्कुराए, फिर बोले अच्छा नारद तुमको परमिशन है, धरती पर जाओ और जितने भी लोग स्वर्ग में आना चाहते हैं उनकी लिस्ट ले आना, हम उसको स्वर्ग में भेज देंगे। अब खेल शुरू हो गया। नारद बड़ा खुश कि भगवान ने मेरी बात भी सुन ली और मुझे अथॉरिटी दे दी कि किसी के पास भी जाऊं और मैं उसको ले जाऊंगा। तो पहले पहले उसने सोचा, एक बिजनेसमैन था, शाम के वक्त नीचे अपने कमरे में पैसे गिन रहा, नोट गिन रहा था। नारद जी वहां प्रकट हो गए, बोले नारायण नारायण। उसने ऐसे करके देखा कौन है, बोला तुम्हारे लिए खुशखबरी है। बोला पहले ये बताओ आप यहां आए कैसे? मैं पैसे गिन रहा हूं, मेरा ब्लैक का पैसा है, मैंने अकाउंट में नहीं डाला हुआ, तुम यहां आए कैसे? तुम्हें इनकम टैक्स वालों ने भेजा, क्या बात है, जल्दी से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस को फोन करके तुम्हें अरेस्ट करा दूंगा। नारद जी ने सोचा ये तो लेने के देने पड़ गए, मैं तो इसको स्वर्ग में ले जाने आया था, वहां से गायब हो गए। अब उन्होंने देखा एक सन्यासी जी हैं, बहुत अच्छा जमीन लिया है, आश्रम बनाया है, उसके बाहर निकल रहे हैं। वहां पहुंच गए, नारायण नारायण, महात्मा जी आपके लिए खुशखबरी है। उसने देखा एक दिव्य वस्त्रधारी है, अजीब लग रहा है, अलौकिक लग रहा है, बोला क्या खुशखबरी है? बोला स्वर्ग में आपके लिए सीट खाली है, भगवान ने आपको याद किया है, स्वर्ग में चलिए। अब वो सन्यासी बोला देखो भाई अभी तो मैंने ताजा ताजा आश्रम बनवाया है, अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, मंत्री जी से बातचीत चल रही है, अभी तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा महाराज चलो स्वर्ग में भगवान ने परमिशन दी आप, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। उदास हो गए, वहां से भी गायब हो गए। तो जिसके पास जाए वो ऐसा ही करे। अब उसने सोचा, अब पता लगा भगवान मुस्कुरा क्यों रहे थे, मैंने तो बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया था, स्वर्ग में तो हरे जाना चाहता है। अब उसको भय लगा कि मैं वापस जाऊंगा तो भगवान को क्या कहूंगा, कम से कम एक दो को तो ले जाऊं। अच्छा तो उसने देखा एक बूढ़ी माता है, बड़ी कुबड़ी है, दुखी है, लाठी पकड़ी हुई है, हे राम मुझे उठा ले, हे राम मुझे उठा ले। तो उसने कहा कम से कम ये जरूर चलेगी। अब उसके पास जाके वैसा ही किया तो माता ने कहा कि देखो अभी मैं नहीं जा सकती, अभी मुझे अपने पोते की शादी करनी है, अभी नहीं मैं जा। उसने कहा माता चल, तू तो कह रही थी हे राम मुझे उठा ले, कहती वो तो मैं झूठ मूठ कह रही थी। अच्छा तो मतलब यह है जब उसने बहुत जिद की कि ये ही जा सकती है तो बोली मेरे पीछे क्यों पड़ गया तुम, और किसी के पास जाओ। तो इसी प्रकार से ये तो हुई कहानी। अब बाबा कहता है मैंने तो बच्चों को उनकी जन्मपत्री देखकर चुनकर खुद उनको अपने बच्चे बनाया है, और वो तो ना भी जाना चाहेंगे तो मैं उनको सत्युग में ले ही जाना है। तो ऐसी स्थिति में बाबा कहता है कि मैंने ये भी बता दिया कि यहां जो कुछ है, आज की मुरली भी आपने सुनी कि जो कुछ तुम अपने मन मत पर करोगे, अपने हिसाब से करोगे, तुम्हें कर्म कूटने पड़ेंगे, और जो श्रीमत पे करोगे उसका तुम्हें 21 पीढ़ी तक सुख मिलेगा। ये सब भी हम जानते हैं, और ये भी जानते हैं, आपसे हम पूछते हैं क्या स्वर्ग में کوئی خراب چیز ہو سکتی ہے؟ جو کہتے ہیں سورگ میں کوئی چیز خراب نہیں ہو سکتی بالکل، وہ ذرا ہاتھ اٹھائیے، کیونکہ بولنے میں تو دقت ہوتی ہے. جو کہتے ہیں سورگ میں کچھ بھی خراب نہیں ہو سکتا ذرا بھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس پرشن کا دوسرا بھاگ ہے، کیا نرک میں کوئی چیز اچھی ہو سکتی ہے؟ بابا نے تاجی مرلی میں کہا ہے کہ ایک بھی پاون کل جگ میں نہیں ہے، کہا ہے نا. تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اگر سورگ میں ایک بھی چیز خراب نہیں ہو سکتی تو کیا نرک میں ایک بھی چیز اچھی ہو سکتی ہے؟ جو کہتے ہیں نرک میں ایک بھی چیز اچھی نہیں ہو سکتی، پیچھے والے بھی سن رہے ہیں نا، وہ ہاتھ اٹھاؤ. نرک میں ایک بھی چیز اچھی نہیں ہو سکتی. اچھا، دل سے کہا. اب بتائیے پھر بے حد کی ویراگ ورتی کا سبجیکٹ کیوں رکھا ہے؟ کس چیز سے ویراگ چاہیے ہمیں؟ نرک میں تو کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا ہم سمجھتے ہیں نہیں، کچھ کچھ اچھا ہے، سیب کھانا اچھا ہے، سیب سے تو طاقت بنتی ہے، ہے نا، دودھ پینا اچھا ہے، سیر کرنا اچھا ہے، کلاس مس کر کے بھی سیر کرنا اچھا ہے، کیونکہ سنگم کا شریر بڑا امپورٹنٹ ہے نا، آرام کرنا اچھا ہے کیونکہ یہ تو امولیہ ستن ہے، اگر آرام نہیں کریں گے تو شریر کو کچھ ہو گیا تو. اچھا، تو پھر جائیں گے کلکتہ میں سینٹر پر، پھر کہیں گے چلو دو چار جگہ دیکھے ہمیں، ڈائمنڈ ہاربر کہاں ہے، بلور بٹ کا تھوڑی سیر بھی کر لیتے، اچھا ہی ہوگا، تبھی تو جاتے ہیں. اب آپ یہ بتاؤ کہ بابا کہتا ہے کہ جب ٹوٹل اتھل پاتھل ہوگا اس وقت آپ کا کون ساتھ دے گا؟ یہ شریر دے گا، پراپرٹی دے گی؟ کوئی نہیں دے گا. اگر سچ مچ پوچھا جائے تو جس کو آپ بالکل سمجھتے ہیں نا، یہ وہ بھی نہیں دے گا. آپ نے بندری کی کہانی سنی ہے؟ بندری کی، ایک بندری تھی، وہ گنگا کے تٹ پر رہتی تھی. تو گنگا میں پانی بڑھنے لگا، اس کے پانچ بچے تھے، تو پیڑ پہ اوپر چڑھ گئی، پانی اوپر آ رہا تھا تو پانچوں بچوں کو لے کے پیڑ پہ چڑھ گئی، پانی اور اونچا ہوا اور چڑھ گئی. جب پیڑ کی بالکل اوپر تک پانی پہنچ گیا تو اس نے کیا کیا، ایک بچہ نیچے رکھ لیا پانی میں اور چار لے کر چڑھ گئی، اور پانی چڑھا تو دو بچے نیچے رکھ لیے، ارتھات دھیرے دھیرے اس نے اپنے چاروں بچوں کو نیچے رکھ دیا اور آپ اپنی جان بچانے کے لیے. تو یہ ہے سار. تو کہنے کا بھاو یہ ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں تو بابا نے پہلے ہی کہہ دیا ہے آخر میں میرا تو شیو بابا ایک. تو جیسے وہ طوفان میں جہاز ہے، وہ ہو گیا بابا. اب ہم کو تو بابا نے کہہ دیا کہ آپ کو اگر انت میں بالکل ہر طوفان کو موج سمجھنا ہے، تحفہ سمجھنا ہے، جھولا سمجھنا ہے، ابھی سے ہی میرے ساتھ کنیکشن رکھ لو. ہم سب رکھ بھی لیتے ہیں. اور پہلی لائن جو گیت کی ہے، میرا تو شیو بابا ایک، وہ تو ابھی ہم کہیں گے، سب گائیں گے، میرا تو شیو بابا، میرا تو شیو بابا ایک یا دو، میرا تو شیو بابا ایک. جو دوسری لائن ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا نہ کوئی. پھر ہم کہتے ہیں شیو بابا بھی میرا، دوسرے بھی میرے، کیا حرج ہے؟ دونوں ہاتھ میں لڈو رکھو، جب شیو بابا کی ضرورت پڑے گی شیو بابا بھی میرا ہے، تب تک دوسروں سے کام چلاؤ، اس کو کیا تکلیف دینی ہے چھوٹے چھوٹے کام کے لیے. اس لیے بھگوان کہتا ہے، مطلب کیا ہوا کہ آپ کو اس جہاز کو پکڑنے کے لیے بھی چلو مل گیا چانس، آپ کشتی سے اس کو پکڑ لیا، اب آپ جہاز کو پکڑیں گے یا کہیں گے کہ میرا سوٹ کیس بھی جہاز میں چڑھ جائے، میرا بستر بھی جہاز میں چڑھ جائے، کھانے کا ڈبہ بھی جہاز میں چڑھ جائے، اس کو کہتا آپ کیا کرو گے کہ میں جہاز میں چڑھ جاؤں اور چیزوں کو چھوڑو. اسی پرکار سے ہم دیکھیں گے کہ بالکل جب دقت آتی ہے تو ویکتی کہتا ہے کچھ بھی نہ ہو بس میں بچ جاؤں. آپ نے افغانستان کے دیکھا تھا پلین کے اوپر کیسے لوگ چڑھ رہے تھے، بھاگ رہے تھے کہ میں ہم بچ جائیں چلے جائیں. اب ایسی استھتی میں کون جا سکتا ہے؟ تو بابا کہتا ہے تو میں تو پرم دھام میں جاتا ہوں، میں پرم آتما ہوں، برہما بابا بھی پرم دھام میں جائیں گے، وہ تو پہلے پہنچ گئے اوپر ریڈی، پوروج بھی پہنچ گئے، میرا کیا ہوگا؟ میں بھی پرم دھام میں جانے کے لیے ایسے اس کو پکڑا ہوا ہے، یہ اور چیزیں بھی ہیں تو دقت ہوگی. اگر اسی چیز کی آپ کو اٹریکشن ہے تو پھر وہ کھینچے گی. تو موٹا پرشن یہ ہے، شیو بابا سب کو اٹریکٹ کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں چاہیے، ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے. اب ہم بھی سب کو اٹریکٹ کریں یا خود اٹریکٹ ہوں، دو ہی باتیں ہیں. یا تو آپ اکرشت ہو سکتے ہیں یا آپ اکرشت کر سکتے ہیں. اب کیا منظور ہے آپ کو، اکرشت ہونا یا اکرشت کرنا؟ دنیا میں بھی لوگ کیا پسند کرتے ہیں کہ سب لوگ میری طرف اکرشت ہوں، اچھا بھاشن کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا سمان، کہ سب لوگ میری طرف اکرشت ہوں. بابا بھی کہتا ہے ایک ہوتے ہیں دیکھنے والے، ایک ہوتے ہیں کرنے والے، تو سب کرنے والے بننا چاہتے ہیں. تو شیو بابا کہتا ہے کہ میں ایک ہوں جو کسی کی طرف اکرشت نہیں ہوتا، سب میری طرف اکرشت ہوتے ہیں. اگر ہم نے باپ سمان بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو سب کو اکرشت کرتا ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، تو ہم بھی اکرشت کرنے والے بن جائیں گے، اکرشت ہوں گے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میگنیٹ کے ساتھ اگر آپ سوئی جوڑ دو تو سوئی کے ساتھ سوئی جوڑ دو وہ بھی پکڑی جاتی. تو مین بات کیا ہوئی، اتنے سال بابا نے ہم کو گیان دیا، سب کچھ دیا، وہ کہتے اب آپ سوکشم لوک میں آ جاؤ، وہاں سے یہاں جو بھی بچا کچا حساب کتاب ہے پورا کرو، اور وہ بھی جلدی کرو کیونکہ حساب کتاب آپ کا سیب کھانے سے، سیر کرنے سے، اس سے نہیں ہوگا، وہ وکرم وناش کرنے سے ہوگا. آج بھی بابا نے کہہ دیا اگر رہا تو کھانسی لینا، اکال مرتیو ہونا، ایکسیڈنٹ ہونا، یہ سب کرم کوٹنے والی بات ہے. اور میں تم کو اس تھوڑے سے جنم میں میرا ساتھ لے لو، 21 پیڑھی تک کرم کوٹنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، آپ کا آیو آدھی آدھی سب پورا ہو جائے گا. اس لیے یہ بات نوٹ کر لیجئے. اب ہم آپ کو برہما بابا جی کو آپ نے نہیں دیکھا، کسی نے دیکھا؟ متیشوری جی کو آپ نے نہیں دیکھا، تو ہم کو ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہوا ہے، تو ہم آپ کو برہما بابا کیسے اپنے بچوں کو ساتھ رکھ کے، اس سمے گیان اتنا ریفائن نہیں تھا، اب تو گیان ریفائن ہے، کوئی گیان کو سن کر بھی سمجھ سکتا ہے ایشور کا گیان ہے. ودیش والے بھی ہو گئے ہیں 1600، تو ابھی ہیں 1600، اور اتنی سنکھیا ہے تو لوگ کہیں گے اتنے لوگ برہما کماری کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا. اب تو نیتا وغیرہ بھی برہما کماری کی مہما کرتے ہیں، ٹھیک. لیکن اس سمے اگر آپ بیج لگا لو تو لوگ آپ پہ ہنستے تھے، یہ کیا ہے تم پاگل ہو گئے ہو آدھی آدھی. اس سمے برہما بابا نے کس پرکار سے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھ کے ان کو پوترتا کا کیا سکھ ہوتا ہے، ईश्वरी परिवार क्या क्या अति इंद्रिय सुख होता है, बाबा मम्मा की क्या पालना होती है, वो जो कराई उससे हमको क्या शिक्षा मिलती है, वो हम चार पांच बात आपको सुनाते हैं। अब पहली बात सुनिए कि सबसे पहले 1953 में, अब कितने साल हो गए होंगे आप देख सकते हैं, 1953 में जब मेरी आयु 21 वर्ष थी शरीर की, तो हम अपने माता पिता भाई के साथ माउंट आबू में दूसरा घर होता था पांडव भवन, वहां आए थे। अब 2023 हो गया, ठीक है, उस समय मेरी आयु 21 वर्ष थी, अब 90 वर्ष 4 महीने है। आप सोचिए कि कितना सारा मैंने ये यज्ञ को अच्छी तरह से देखा। तो जब हम गए उस समय क्लास के बाद साथ वाला कमरा होता था, साथ वाले कमरे में बाबा नए बच्चों से मिलते थे, तो हम लोग हमारा परिवार मिला तो बाबा ने, मेरे पिताजी को बहुत शौक था सरेंडर होने का कि मैं बाबा का बच्चा बन जाऊं। उन्होंने कहा बाबा मैं तो ये सब छोड़ छाड़ के आपका बच्चा बनना चाहता हूं। तो बाबा ने कहा देखो तुम्हारा परिवार है तो तुम ट्रस्टी बन के बाबा अपने परिवार में रहकर सेवा करो। मेरी माता को बाबा ने कहा वैसे तो तुम नष्टो मोहा हो, और भी नष्टो मोहा होने के लिए तुम्हारा पति तुमको, हम दिल्ली में रहते थे, दिल्ली के पास तीर्थ स्थान में एक सेंटर खोल देगा, तुम वहां रहना। तो मथुरा में मेरे लौकिक पिता ने सेंटर खोल दिया और मेरी माता 92 इयर्स तक की एज तक रही, वो मथुरा में ही रही। हम ऑफिसर बन गए, बड़ा कहते थे माताजी आप हमारे पास आ जाओ, नहीं विजिट करने आएगी, पर बाबा ने मुझे यहां रखा। मेरी टर्न आई, तुम क्या करते हो, तो मैंने बताया मैं पढ़ाई करता हूं, लॉ पढ़ता हूं और चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग लेता हूं। बाबा ने कहा बच्चे तुम पढ़ाई पूरी कर लो। मेरा छोटा भाई कॉलेज में पढ़ता था 12वीं क्लास में, उसको कहा तुम बच्चे पढ़ाई छोड़ दो। अब देखो बाबा हर एक को अलग अलग राय दिया। मेरा छोटा भाई 3 साल के बाद शरीर छोड़ गया उस वक्त के, इसका मतलब बाबा को पता था इसने शरीर छोड़ना है। उस उन दिनों में बाबा ने उससे अनेक प्रकार की सेवा करवाई, उसकी डिटेल में अभी समय नहीं है। बाबा को पता था कि मेरी आयु लंबी होगी तो मुझे कहा तू पढ़ाई कर ले। ज्योतिषी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी एज 49 ईयर होगी। अब योग लगाने से बाबा कहता आयु बढ़ जाती है, वो भी आप देख रहे हैं। अच्छा ये तो हुआ शुरू की बात। उसके बाद ये मेरा भाई एक बैग दे गया, इसका भी मैं आपको सुनाऊंगा, ये बैग आप देख रहे हैं ना। उसके बाद अनेक प्रकार से बाबा ने हर एक बच्चे को, ये मैं तो अपनी सिर्फ अनुभव सुना रहा हूं, जितने भी हम भाई बहन यहां बैठे हैं, ये मैं क्यों सुना रहा हूं बातें कि आप नोट करना कि एक बारी हम बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा और हमने कह दिया मेरा बाबा, बाबा कहता है मैंने तो एक बारी मेरा बच्चा कह दिया, मेरे तो और किसी से कंसर्न नहीं है, मैं अपने बच्चों के द्वारा ही नई दुनिया बच्चों के लिए बनाता हूं। आपने मेरा बाबा कह भी दिया, बीच में आप थोड़ा बहुत उंगली छुड़ा के भाग भी जाओगे फिर भी आ जाओगे, क्योंकि ये ज्ञान अविनाशी है। लेकिन किस तरह बाबा हर बच्चे का, वैसे तो रोज बाबा बोलते हैं अमृत वेले भी कि मैं हर बच्चे का 100% ध्यान रखता हूं, मैं आया ही उनको सहयोग देने के लिए हूं, बच्चे विस्मृति में आके भूल जाते हैं कि बाबा मेरे साथ है, लेकिन उसका प्रूफ जो है वो दो चार बातों से मैं आपको सुनाता हूं। अब आप देखिए कि एक बार उन दिनों में अव्यक्त बाबा, पहले तो साकार बाबा की बात दो तीन बताता हूं। तो साकार बाबा जो ये जान सकता है इसने शरीर छोड़ना है, इसने लंबे रहना है, तो सब जानता है। तो साकार बाबा ने भोजन के बाद मुझे बुलाया। अब बाबा का कमरा आपने ऊपर देखा है, उस समय ये कमरा आधा होता था, जहां कुर्सी रखी है वहां तक होता था। साथ वाला कमरा अभी बढ़ाया गया है बच्चों के बैठने के लिए, उसमें फल रखते थे। बाबा बुला के मुझे बोला कि बच्चे तुमको ताश खेलना आता है? मैंने कहा जी नहीं। तो बोले कि तुम बुद्धू है, वो जैसे कहते थे, तुम क्लब में नहीं जाता? मैंने कहा जी मैं अपनी कंपनी के क्लब में साल में एक बार जाता हूं, मैं अकाउंट्स का काम करता हूं, तो मैं उसके अकाउंट चेक करने जाता हूं। मैंने क्या कर, फिर बाबा ने मुझे थोड़ा सिखाया जो बाबा एक बच्चे के साथ खेलते थे, इजी सा था, मैंने सीख लिया। तो बाबा का अपना बेटा नारायण दादा, जिसको आप जानते हैं, सुना होगा, वो भी थे। तो बाबा ने मुझे अपने साथ बिठाया और नारायण दादा को सामने बिठाया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखो अपने बेटे को वहां बिठा रहे हैं, मुझे अपने साथ। तो रोज भोजन के बाद 10-15 मिनट बाबा ताश खेलने के कारण से हमें अपनी समीपता का अनुभव कराते थे। और रोज ही बाबा जीतते थे, क्योंकि बाबा तो बाबा ही है, ताश जीतते थे तो हमको फिर ऐसे करना पड़ता था हारने के लिए। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि बाबा ने नहीं बुलाया, हमें तो आदत पड़ गई थी बाबा के पास जाने की। तो मैं बाबा के कमरे के बाहर घूम रहा था, उनकी ब्राह्मणी लच्छू बहन आई, मैंने कहा बाबा ने नहीं बुलाया? बोली अच्छा मैं पूछ के आती हूँ। कहा जाओ अपने साथी को ले आओ। उस समय बाबा अपनी वो जहां बैठते थे कंबल लेके ऐसे थोड़ा लेटे हुए थे। तो बाबा ने कहा आओ बच्चे हम लोग खेले। तो बाबा हार गया। हमने कहा बाबा हार गया तो बाबा से ऐसे कैसे कराएंगे? तो हम अंदर से ऐसे सोच रहे थे, पर मैंने कहा लच्छू बहन बाबा की तबीयत तो ठीक है, ऐसे ऐसे लग रहे हैं। उसने कहा बाबा को 102 बुखार है, फिर भी बच्चों का दिल रखने के लिए बाबा ने बुला लिया। इस तरह का अब सोचो आप, तो इस तरह का पावरफुल बाबा वाइब्रेशन देता था। फिर हम समझते हैं कि हम बाबा से कुछ छुपा सकते हैं, ऐसे समझते हैं ना, बाबा से छुपा लेते हैं। लेकिन वो साकार बाबा भी ऐसा तेज था, कुछ नहीं छुपा सकते थे। तो क्या होता था, जो परिवार जाता था, उन दिनों तो थोड़े परिवार थे, तो एक बार बाबा के साथ एक परिवार को भोजन करने का अवसर मिलता था। तो हमारे परिवार को भी भोजन करने का अवसर था। उन दिनों आम का सीजन था, तो आम आए हुए थे, तो बाबा ने भोजन के पहले सबको एक एक आम दे दिया अपने हाथ से प्यार से। अच्छा, मेरी माता को पता था कि मुझे आम खाना पसंद बहुत है। भोजन शुरू होने लगा तो मेरी माता ने बहुत चुपके से, बहुत ही चोरी से टेबल के नीचे से अपना आम मेरी तरफ खिसका दिया। उसने भी समझा बाबा को नहीं पता लगा, मैंने भी समझा बाबा को नहीं पता लगा। अच्छा, खिसका दिया। जब भोजन पूरा हो गया तो बाबा ने कहा लच्छू बेटी जाओ एक टोकरी में आम लेके आओ। तो वो टोकरी में आम लाई, तो मुझे कहा अच्छा बच्चा तो ले ले, अर्थात बाबा को पता लग गया है, इसलिए तुम ये नहीं समझना कि तुमने, तुम्हारी माँ ने चोरी से आम दे दिया है और बाबा ने बच्चे के तौर पे दे दिया। अच्छा, तो हमने देखा कि साकार में भी बाबा इतना, यानी कहता तो था मुझे कुछ पता नहीं लगता, मैं तो साकार हूँ, है ना, शिव बाबा को, लेकिन 100%। इसके पश्चात कभी भी बाबा बच्चों को नजदीक, उनको पता है कि किस बच्चे को मैंने आगे जाके क्या पाठ देना है। हम तो बिल्कुल छोटे बच्चे थे, एक्चुअली तो मम्मा से तो हम प्यार से मिल लेते थे, बाबा से हम थोड़ा झिझकते थे, एक बड़ा बाबा है। अच्छा, एक दिन बाबा बहुत स्वाद लेकर गिलास में कुछ पी रहे थे, सिर्फ पी नहीं रहे थे बल्कि आवाज देकर पी रहे थे, जैसे कोई टेस्टी चीज पी रहा हो, आवाज भी आ रही थी। मैं गुजर रहा था, मैंने कहा बाबा आप क्या पी रहे हैं? बोला बच्चे लोगे, उन्होंने आधा गिलास मुझे दे दिया। अब वो था करेले का जूस। अच्छा, अब बाबा शुगर के कारण करेले का जूस पी रहे थे, लेकिन वो टेस्ट लेकर, खास कि ऐसा ना हो कि भी मैं कोई कड़वी चीज पी रहा हूं। मैं तो बच्चा था, अब तो मैं पी लेता हूं, जरा सा पिया मेरे को तो ऐसा ऐसा हुआ। अब बाबा ने दिया, मैं करूं क्या, उसको ना भी नहीं कर सकता। सोच में था तो मम्मा गुजरी, मेरे को देखा, बोली क्या बात है? मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है। मम्मा ने कहा अच्छा तुम छोड़ दो, तब करके मैं उससे बचा। फिर उन दिनों में भारत में, भाई लोग जानते हैं, शेव करने के ब्लेड इंडिया में अच्छे नहीं बनते थे, और गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। तो जर्मनी से बाबा के पास बहुत फर्स्ट क्लास शेव करने के ब्लेड कोई भाई बच्चे भेजते थे, उसका नाम था विल्किंसन सोड ब्रांड, मुझे ये भी याद है। तो बाबा ने मुझको एक दे दिया पैकेट, अच्छा बच्चे तुम भी यूज करो। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भगवान मुझे शिव के ब्लेड दे रहा है, अब तो मैं जब भी शिव करता हूँ वो याद आता है बाबा ने ब्लेड दिया था। मैं तो अपने शहर चला गया। उसके बाद मैं अगली बारी आया, बाबा पूछते हैं बच्चे तुम एक ब्लेड कितने दिन यूज करता है? तो बहुत भगवान पूछ रहा है, तो मैंने कहा जी 21 दिन 20-21 दिन। फिर बाबा हंसा, बोला बाबा के तो बाल ही नहीं निकलते, क्योंकि बाबा तो बहुत चमकीले थे, बुजुर्ग भी थे, ऐसे हंसते थे। तो मुझे अब उसकी वैल्यू पता लगती है कि दुनिया में भगवान आए और आपको कोई चीज दे। शिक्षा कैसे देते थे कि मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, तो पिताजी भी ऑफिस जाते थे, तो उनके ड्रेस थे ऑफिस के, 30 ड्रेस थे, वो मेरे फिट थे। तो मैंने सोचा ब्राह्मण को भक्ति मार्ग में देते हैं, तो मेरे, मैं तो खुद ही ब्राह्मण हूं, मेरे फिट आ गए, मैंने वो 30 ड्रेस रख लिए कि चलो शेविंग हो जाएगी और ऑफिस में काम आएंगे। अब मधुबन जब आप आते हैं तो वहां तो ऑफिस का ड्रेस नहीं पहनते। मैं पंजाब से चलता था, 2 ट्रेन बदल के मधुबन आता था, उस वक्त हम पहन के चलते थे, कोयले का ट्रेन होता था, खिड़कियां खुली होती थी, काला हो जाता था। अच्छा, तो लास्ट दिन फिर हम पहनते थे, क्योंकि अभी ट्रेवल करना, बीच में तो हम कुर्ता पजामा पहनते थे। तो लास्ट दिन मैं वो ड्रेस पहन के पिताजी की बाबा से छुट्टी लेने गया। उन दिनों में बाबा क्या करते थे, इंडिया में तो रेडीमेड ड्रेस होते ही नहीं थे, हांगकांग से कुछ सिंधी फैमिली थी वो रेडीमेड ड्रेस भेज देते थे, और जो बच्चे ऑफिस में काम करते बाबा उनके लिए रख लेते थे कि चलो इनके काम आ जाएंगे, मधुबन में तो कोई पहनता नहीं। तो एक ड्रेस बाबा ने मेरे लिए रखा हुआ था, अब मुझे कहा बच्चे ये तुम पहनना। तो मैंने अपनी, जैसे बच्चा होता है छोटा, मैंने कार्रवाई दिखाने के लिए मैंने कहा बाबा देखो ये मेरे लौकिक पिता का ड्रेस है, कितना मुझे फिट है, ऐसे मैंने 30 ड्रेस रख लिए। तो बाबा मुस्कुराया, बोला बच्चे लौकिक बाप का पहनोगे तो लौकिक बाप याद आएगा, बाबा का पहनोगे तो बाबा याद आएगा। क्योंकि सचमुच जब मैं पहनता था तो पता था लौकिक बाप का है। मैंने बाबा का ड्रेस ले लिया और अगली बार मैं 30 के 30 ड्रेस बंडल बना के मधुबन ले आया पिताजी के। वहां मैंने सरेंडर कर दिए कि चलो किसी को दे देंगे। अच्छा, मधुबन में कौन ऑफिस का ड्रेस पहनता है, उन्होंने बांट दिए। तो चौथे पांचवे दिन धोबी घाट पे एक भाई कपड़े धो रहा था और मेरे पिताजी का ब्लू शर्ट पहना हुआ था पीला। अब मैं तो सरेंडर कर चुका था तो मैंने कहा ओ मेरे पिताजी की ब्लू शर्ट। तब मुझे ख्याल आया कि बाबा ने जो शिक्षा दी है कि बेटा तुम लौकिक का त्यागने के बाद भी मुझे ये लग रहा है मेरे पिताजी की ब्लू शर्ट है, तो पहनता तो कितना मेरा योग कम होता। अच्छा, अब रह गई बात बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस की। बाबा कभी भी शरीर को नहीं देखता था। अभी भी बाबा कहता है मैं कभी किसी बच्चे के ना शरीर को देखता हूं और ना मैं उनकी कमी को देखता हूं। हम समझते हैं बाबा मेरी कमी को देख रहा है, बाबा बुलाएगा तो हम अपनी कमी वर्णन करना शुरू कर देंगे, बाबा एक मेरी मी का ना, तो शरीर का नहीं देखता। मुझे ख्याल आता है तो एक बार मैं अपने शहर से चल के कितने ट्रेन ट्रून घूम कर माउंट आबू आया तो 2 बजे थे दोपहर के। तो मैं खूब थका हुआ था, कुछ मैं कंजूस था तो मैं टैक्सी नहीं करता था, बस में आता था। बस से फिर एक रेडी होती थी बच्चों की चार आना देखे उसमें आता था। तो मैं आ करके मैंने सब खाना पीना खा के चले गए थे, मैं थका तो मैंने सोचा मैं शाम तक जाके ना चाय के टाइम जाऊंगा। उस काले ड्रेस में ही मुझे एक वहां जगह एरोप्लेन ऊपर वो मुझे कमरा मिला। तो वहां जाके मैंने ऐसे सूटकेस रख दिया, जूता भी पहना हुआ था पेंट भी पहना हुआ था, तो खाट पे ऐसे लेट गया बहुत थका हुआ। इतने में आवाज आई खड़ाऊं की, बाबा लकड़ी के खड़ाऊं पहनते थे कि जैसे बाबा ऊपर आ रहे हैं। तो मैं चुकन्ना हो गया, बाबा ऊपर आ रहा है और मैंने तो काला मेरा ड्रेस है तो बाबा आएगा कमरे में तो कहेगा इतने तो सूटकेस में नहीं। तो मैंने क्या किया, एरोप्लेन के बाहर कुंडा लगा के बाहर खड़ा हो गया। तो बाबा हमेशा बच्चों के साथ आते थे, कुछ बात करते करते आए, मुझे देखा, टैंक था पानी का उसके तरफ गए, टैंक खुलवाया। और बाबा तो ज्ञान ही सुनाते थे, उसमें से वो देख रहे थे कि टैंक के अंदर पानी के कोई जंक वंक तो नहीं लगा हुआ। तो बोले बच्चे खड़े थे, देखो बच्चा जैसे इसमें जंक लग जाता है तो घासलेट, बाबा केरोसिन को घासलेट कर इससे साफ किया जाता है, आत्मा भी जंक लग जाता है तो ज्ञान घासलेट से साफ करते हैं। मेरी तरफ देखा ऐसे करके चले गए। बाबा ने तो कुछ नहीं कहा कि तेरा चेहरा भूत जैसा है या काले कोयला बग गया। ले उसके बाद जो मुझे थकावट थी, इतनी थका हुआ हूं मैं तो 2-3 घंटे, वो मेरी पता नहीं कैसे गायब हो गई। जिसको कहते ना कि श्रेष्ठ पुरुषों के संग के साथ आपके साधु बड़े परमार्थी भक्ति में कहते हैं, तो मैं उसके बाद 2-2 सीढ़ी उतर कर कठी किचन में गया, चाय बनाया पिया, मुझे उसके बाद वो थकावट रही नहीं। तब मैंने नोट किया कि थकावट एक मानसिक स्थिति है, आपको खुशी मिल जाए कुछ वो गायब हो जाती है। इस प्रकार की अनेक सारी बातें बाबा के साथ हम सीखते थे। ये जो बैग है ये आप देखिए, साकार बाबा ने मुझे खुद दिया था और ये भी हांगकांग का बना हुआ है। उन दिनों भारत में इस प्रकार के बैग बनते ही नहीं थे। इसके अंदर फोम लगा हुआ है, आज भी चमक रहा है। बाबा ने कहा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था तो बाबा को मुझे सेवा दी थी VIP की सेवा करने, तो बाबा ने कहा बच्चे जब भी जाओ इसमें जो भी चिट्ठी ले जानी लिटरेचर ले जाना इसमें डाल के ले जाओ तो बाबा तुम्हारे साथ रहेगा। और सचमुच मैं हमेशा जो भी इसको ले जाता था स्मृति में, बाबा भूल भी जाए बात करते कर, लेकिन बाबा ने ये चिट्ठी दी है और मेरा काम सफल होगा। इस बैग में हमेशा, आज तक ऐसा नहीं हुआ इसमें मैं चिट्ठी ले जाऊं और किसी से मिलूं और वो ना कर दे। देखो ये भी बाबा का तरीका है कि बच्चों को स्थूल रूप से याद कराए। अब मैं आपको बाबा किस प्रकार से बच्चों की जन्म पत्री को जानता है और किस प्रकार से आप उसका बच्चा बन जाओ, तो दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सब की दुनिया की बातों को क्रॉस करा के अपने बच्चे का सम्मान रखेगा और उसको सफलता दिलाएगा। आपने बाबा की जिंदगी में एक बारी कोई पूरी बात मान ली, एक बार कोई खास बात, तो सारी लाइफ बाबा आपका ध्यान रखेगा। ये हमारा अनुभव है। अब मैं आपको एक बात सुनाने जा रहा हूं। जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का इम्तिहान पास किया तो नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना दफ्तर खोलते हैं, उसमें कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो दिल्ली में मैंने, मेरे पिताजी का अच्छा संपर्क था, बहुत बड़े बिजनेस एरिया में ऑफिस लेकर दफ्तर खोल लिया। अभी 8-9 महीने हुए होंगे तो मैं माउंट आबू गया, तो बाबा ने पहला प्रश्न पूछा, बच्चे तुमने इम्तिहान पास कर लिया? वैसे तो बाबा कहते हैं मेरा इन चीजों से कोई तलक नहीं है, मैं तो आध्यात्मिक ज्ञान तो पूछा। अब मैंने बड़े फखर से कहा, हाँ बाबा मैंने कर लिया और ऐसे ऐसे मैंने दफ्तर खोला है। तो बाबा बोले थोड़ा समीप आओ। मैं तो ऑलरेडी समीप था, परंतु अच्छा देखो बच्चा, अगर तुम वकालत करेगा तो तुम्हें खाते समय भी पता नहीं लगेगा क्या खा रहा है, सारा ध्यान जाएगा। तुम कोई सरकारी नौकरी कर लो, बाबा ने बोला। ठीक है, उसी समय मैंने मधुबन में, क्या बाबा की पर्सनैलिटी थी, इस स्नेह से बाबा ने कहा, मैंने फैसला कर लिया अपने दफ्तर में नहीं जाऊंगा, सबके कागज वापस कर दूंगा और अखबार में देखकर नौकरी करूंगा। मुझे कभी कुछ पता नहीं नौकरी क्या होती है, अखबार में पढ़ा और जो पहली नौकरी चार्टर्ड अकाउंटेंट की लिखी हुई मिली उसमें मैंने हाथ से लिखकर एप्लीकेशन भेज दिया। मुझे ये भी नहीं पता था टाइप कराना होता, और वो थी पंजाब में कहीं। अच्छा, क्योंकि बाबा ने कहा था तो मुझे इंटरव्यू भी आ गया, क्योंकि बाबा की शक्ति काम कर रही है। अब उस नौकरी के लिए दिल्ली से जो ट्रेन चलती थी उसमें एक ही डिब्बे में 8 लड़के उसी नौकरी के लिए जा रहे, वो सारे के सारे मेरे को छोड़कर बड़े स्मार्ट थे, इंग्लिश बोल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और मैं बेचारा कोने में बैठा ऐसे कि अगर ये जा रहे हैं तो मेरे को तो नौकरी मिल चुकी। दूसरी बात कि हमें इंग्लिश बोलने का अभ्यास नहीं, हमारी क्वालिफिकेशन अच्छी है लिखने की इंग्लिश, हम वहाँ पंजाब में कौन इंग्लिश बोलता है, वो फिट 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 कोई मद्रासी था इंग्लिश में बात कर रहे थे। अब हम पहुंच गए। अब मुझे पता नहीं उन लड़कों के साथ क्या हुआ, लेकिन वहां देखा हमने कि उस सरकार की कंपनी ने खाली जमीन ली थी, 300 एकड़ जमीन ली थी, कंपनी कंपनी नहीं बनी थी, एक किराए के ऑफिस में इंटरव्यू कर रहे थे। मेरे से उन्होंने 5 सवाल पूछे। अब बीके लोग कहां सर दुनिया की बातें याद रखते हैं, तो 4 सवाल मेरे गलत थे। मैंने कहा मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं, वो ऐसे ऐसे करते रहे। 5वां पूछा, आप क्या तनख्वाह लेंगे? अब मेरे को कुछ मालूम नहीं तनख्वाह क्या होती है, उसमें होता है पे स्केल होता है, इंक्रीमेंट होता है, कुछ पता नहीं। तो मैंने कहा जो आप दे देंगे। मैं रखा गया, बाकी सारे आउट। अच्छा, अब क्यों आउट? मैंने पूछा कि वो तो बड़े होशियार थे। बोले सब ने ज्यादा तनख्वाह मांगी थी, क्योंकि यहां तो जंगल है, दिल्ली छोड़ के कौन आएगा, और कई तो नौकरी कर रहे थे उन्होंने सोचा सरकार की कंपनियां जरूर ज्यादा तनख्वाह देंगे, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा मांगी थी। उनका रूल था कि मिनिमम पे रखना है, आपने कहा जो दे देंगे आपको रख लिया। अब ये कहानी यहां पूरी नहीं होती। वो कंपनी बहुत बड़ी थी और उनको 8-9 चाहिए थे, तो 2 महीने बाद उन्होंने पुनः विज्ञापन दिया तनख्वाह को बढ़ाकर, ताकि नीचे की तनख्वाह अच्छी हो जाए तो लोग आए। अब मेरी आप ही बढ़ गई क्योंकि मैं तो अंदर था, तो पहले वो होती तो मैं बाहर होता, तो किसने नौकरी दिलवाई मुझे, आप सोच सकते हैं। तो बाबा ने ऐसे तरीका करवा के मुझे नौकरी भी दिलवा दी। इस प्रकार की अनेका अनेक आप समझिए घटनाएं सिद्ध करती हैं कि बाबा अपने बच्चों के जीवन को कंट्रोल करता है। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी शानदार बात बताऊंगा जिसमें किसी को कोई शक ही नहीं रहेगा कि बाबा किस तरह अपने बच्चे का छोटा मोटा भी चीज होगा ना, उसको सफल कराता। माउंट आबू में ओम शांति भवन बनना था और किचन बनना था। पहले छोटा सा किचन था, विदेशी लोग आने शुरू हुए थे तो बनना था। तो बाबा तो अव्यक्त हो गए थे, तो दादियों ने मुझे कहा कि सीमेंट नहीं मिलता, राजस्थान गवर्नमेंट में सीमेंट नहीं देती, जितना का बोरी सीमेंट था उतने का ब्लैक मार्केट था। उन दिनों में 20 रुपए का सीमेंट बोरी था, 20 रुपए का, तो 120 टन सीमेंट चाहिए, तुम गवर्नमेंट में जाके 120 टन सीमेंट गवर्नमेंट से अलॉट कराओ। अच्छा ठीक है, हमको ये पता है कि बाबा ने अपना काम करा लेना है, वो करण करावन हार है और जो नहीं हम कर सकते वही करवाता है, ये तो आप सब जानते हैं। बाबा ने चंद्रमणि दादी को पंजाब में भेजा, उसको पंजाबी नहीं आती थी। बाबा ने नेपाल की राज बहन को नेपाल में भेजा, उसको नेपाली नहीं आती थी। हृदय पुष्प दादी को कर्नाटक में भेजा, उसको कन्नड़ नहीं आती थी। जानकी दादी को लंदन में भेजा, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। तो बाबा का तो काम है, जैसे भक्ति में कहते हैं ना, अंधे से देखना करवा दिया, लंगड़े से पार। मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे गीता का भगवान का काम दिया हुआ। क्यों? वो कहता है अगर तुमको कुछ आता है तुम समझो कि मैंने किया, तो वो करवाता है। अब देखिए, मैं पूछ पाछ के सीमेंट कंट्रोलर के ऑफिस में गया, सामने एक भाई बैठा था, वो किसी से बात कर रहा था। जब उसने बात पूरी कर ली तो मुझे कहता है, कहिए। अब गौर से सुनना, नॉर्मली कोई व्यक्ति ऐसे नहीं करता, पर ऊपर से बाबा क्या करवा रहा है। मैंने उससे पूछा, आप किस शहर के रहने वाले हैं? तो नॉर्मली तो कोई नहीं पूछता। उसने मेरा ही शहर बताया कि मैं अमृतसर का रहने वाला हूं। चलो यहां तक तो ठीक है। फिर मैंने उससे पूछा, आप किस स्कूल में पढ़ते थे? आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसे पूछेगा। उसने मेरा स्कूल बताया। अब बताओ कि बाबा के सिवाय कौन ये जान सकता है और कौन ये करवा सकता है। उसके बाद उस स्कूल के हमने टीचर के नाम लिए आपस में, वो स्कूल के। तो फिर उसके बाद एक दो बातें और स्कूल की। हमारे स्कूल का बैंड फर्स्ट आता था, तो 2 मिनट में वो भी भूल गया कि मैं सीमेंट कंट्रोलर हूं, और मैं भी भूल गया मैं किस स्कूल के बच्चे हो गए। उसके बाद उसने कहा, अच्छा बताइए क्या काम है। तो फिर मैंने उसको बताया, कहता 120 टन सीमेंट, आपने कोई डैम बनाना है। फिर मैंने उसको बताया, उस वक्त उतना सीमेंट देना इम्पॉसिबल था, लेकिन उस व्यक्ति ने कई तरीके करके वो सीमेंट हमको दिलवाया सरकारी रेट पर। और उसके बाद जब तक सीमेंट डिकंट्रोल नहीं हुआ, रजौरी गार्डन का सेंटर बना, श्री फोर्ट का बना, वो सीमेंट देता रहा। दादी जी उसके घर भी गए, वो बाद की बात है। कहने का भाव ये है कि किसको पता, कौन ऐसे कलवा सकता है और किसको ये पता है कि इससे इसका काम बन जाएगा। इसलिए हर एक ब्राह्मण को ये पक्का होना चाहिए कि हर घड़ी का, हर सेकंड का अपने बच्चों का बाबा ध्यान रखता है और कभी उनका सम्मान, अभी तो बहुत सारी कहानियां मैं नहीं सुनाता, आपको ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि दुनिया वाले ही आपको घेर लवा लें, सरकार घेर ले, आपका सम्मान कभी नीचे नहीं होने देगा, भगवान भगवान है। ऐसे भगवान के बच्चे होकर के हम इस दुनिया में सिवाय मौज के, उसके गुणगान के, और सारी दुनिया तो सफलताएं पा ही नहीं सकती, और आज तो आप देखते हैं धीरे धीरे बाबा यज्ञ को कहां ले आए हैं, हर एक बाबा का बच्चा सम्मानित महसूस करता है। अब समझ में आने लग गया है कि बाबा कैसे धीरे धीरे राजधानी भी स्थापन कर रहा है, सब बच्चे समझ रहे हैं और सम्मानित फील कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, वाह बाबा वाह, तेरा शुक्रिया, जितना उसका शुक्रिया करें, क्योंकि इस यज्ञ को वही चला रहा है। आपको शारीरिक रोग हो, आपको बीमारी हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, सब बाबा कहते मेरे हवाले कर दो। अगर हमने कभी सोचा मैं कर लूं तो फिर आपको तकलीफ होगी, वरना मेरे हवाले कर दो तो मौज ही मौज है, झूला ही झूला है। ओम शांति।